दानियल अध्याय दो। दानियल अध्याय दो पद एक से लेकर चार तक। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा। अध्याय दो के चार पद से अध्याय सात के अट्ठाईसवें पद तक पुस्तक का ये भाग नबूकदनेस्सर के राज्य के दूसरे वर्ष में अरामी भाषा में लिखा गया था, क्योंकि यहाँ उल्लेख है कि उन्होंने उसे अरामी में कहा, जो सीरिया की प्राचीन भाषा थी। दानियल अध्याय दो पद चार से लेकर दस तक। हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न को बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदलें तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। ओह राजा जी, आप क्या बात कर रहे हैं? कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के सपने के बारे में कैसे जान सकता है? कोई मनुष्य आपको ये नहीं बता सकता। जरा इतिहास देखिए, क्या आज तक किसी राजा ने अपने सलाहकार से ऐसी बात पूछी है? दानियल अध्याय दो पद ग्यारह। जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। यहां वे लोग गलत आदमी से बात कर रहे थे, क्योंकि नबूकदनेस्सर गरम दिमाग का मनुष्य था, वो क्रोध करने में विलंब नहीं करता था। दानियल अध्याय दो पद बारह और तेरह। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। सो ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। हम यहां नबूकदनेस्सर की अपार शक्ति को देखते हैं। तानाशाही, संपूर्ण नियंत्रण, उसका वचन कानून था। वो इन मनुष्यों को टुकड़ों में काटकर समाप्त करने की आज्ञा दे सकता था। हम अध्याय पांच और छह में दूसरे साम्राज्य मादी फारसी राज्य के युग में जाएंगे। यहां हम पाएंगे कि जब राजा कोई आज्ञा निकालता था और मोहर लगता था तब उसे बदला नहीं जा सकता था, परंतु उनके पास भी नबूकदनेस्सर जैसा स्वेच्छाचारी नियंत्रण और शक्ति नहीं थी। इतिहास में नबूकदनेस्सर के बराबर अधिकार और सामर्थ्य में अन्य कोई मनुष्य नहीं हुआ। संसार में और लोगों के जीवनों पर उसका अद्भुत नियंत्रण था, इसलिए उसके सपने को बताते समय दानियल ने कहा, तुम्हारा राज्य एक निम्न स्तर के राज्य में बदल जाएगा। मादी फारसियों का साम्राज्य ताकत में कम नहीं होगा, वे तो बहुत ताकतवर और धनी होंगे, परंतु जैसा नबूकदनेस्सर का लोगों पर नियंत्रण था वैसा उनका नहीं होगा। वे निम्न स्तर के होंगे। वे प्रादेशिक कानून के अधीन थे, परंतु नबूकदनेस्सर स्वयं ही कानून था। उसके मुंह के वचन ही कानून थे। अतः वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने शास्त्रियों का वध करने की आज्ञा दे दी। दानियल अध्याय 2 पद 14 से लेकर 18 तक। तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान आर्योक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम आर्योक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब आर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए तो वो महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाएं। अतः दानियल राजा के पास जाकर कहता है, महाराज मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको आपका सपना और उसका अर्थ दोनों बता दूंगा। फिर वो अपने साथियों के पास जाकर कहता है, हे भाइयों, ये समय प्रार्थना करने का है। हमें परमेश्वर से कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि हमारी गर्दनें भी तलवार के नीचे हैं। दानियल अध्याय 2 पद 19। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को ये कहकर धन्यवाद किया, मैं समझता हूं कि हमारे लिए और इस कहानी के संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि दानियल की उम्र उस समय लगभग 19 या 20 साल की थी, क्योंकि जब वो बाबुल में बंधुआ बनाकर लाया गया था तब वो लगभग 16 साल का था। एक नौजवान जिसने ये निश्चय किया था कि वो राजा के खाने या मांस खाकर अपने को अपवित्र नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि दानियल को परमेश्वर की बातों की और परमेश्वर की विधियों की अच्छी शिक्षा मिली थी, जो 16 साल की उम्र में ही उसके दिल और दिमाग में इस प्रकार बस गई थी कि अपने देश से दूर दूसरे देश में, जहां का वातावरण और प्रभाव भिन्न था, वो धार्मिक बातों में अटल रहा और उन्हें पूरा किया। एक नौजवान होने के नाते उसके पास उच्च सिद्धांत और उच्च विचार थे। परमेश्वर द्वारा उसे नबूकदनेस्सर का सपना और उसका अर्थ बताया जाना उसके आत्मिक चरित्र की गहराई को दिखाता है। हम दानियल द्वारा परमेश्वर को दिखाई गई प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि दूर देश में एक ऐसा युवक है जो आत्मिकता की असीम गहराई प्रकट करता है। दानियल अध्याय 2 पद 20 से लेकर 23 तक। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। मेरे लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है और जो एक नौजवान लड़के के हृदय की धार्मिकता की गहराई को दर्शाती है। बहुत बार हम किसी जवान व्यक्ति के लिए सोचते हैं कि अभी तो ये छोटा है, ये यहां से धार्मिकता समझेगा, अभी तो इसे समझ भी नहीं आई है। परंतु दानियल और यरमिया को देखिए, इन नौजवानों ने अपनी सेवकाई बहुत ही छोटी उम्र में शुरू कर दी थी और जबकि वे जवान ही थे उनमें गहरी आत्मिक समझ थी। दानियल अध्याय 2 पद 24 से लेकर 28 तक। तब दानियल ने आर्योक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब आर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। अब सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि सपने का अर्थ बताने के लिए दानियल ने श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। जब राजा ने उससे कहा, मैं जानता हूं कि तू मुझे मेरा सपना और उसका अर्थ बता सकता है, इस पर दानियल ने कहा, ना तो पंडित, ना ज्योतिषी, कोई भी नहीं बता सकता, परंतु एक परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है वो भेदों को प्रकट करता है। इस प्रकार वो सपना और उसका अर्थ बताने के लिए परमेश्वर को मान्यता एवं श्रेय देता है। मैं समझता हूं कि यदि कोई परमेश्वर के साथ उसके काम में संलग्न होना चाहता है तो उसे दानियल का ये तरीका अपना लेना चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। उस काम को जो परमेश्वर ने किया था स्वयं श्रेय नहीं लेता। वो नहीं चाहता था कि राजा उसे श्रेय या आदर दे, इसलिए तुरंत उसने राजा का ध्यान परमेश्वर की ओर आकर्षित किया। स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है और उसी ने ये बताया है। दूसरा सपना आने वाले दिनों के लिए था, अतः ये एक ऐसा सपना था जिसका अर्थ भविष्य से संबंधित था, वो भावी घटना जो पृथ्वी पर पूरी होनी थी। दानियल अध्याय 2 पद 30। मुझ पर, अब ध्यान दीजिए, वो स्वयं श्रेय नहीं ले रहा है। दानियल अध्याय 2 पद 30 में आगे लिखा है, ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। परमेश्वर ने यह इसलिए नहीं किया कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं या मेरे पास किसी दूसरे मनुष्य से ज्यादा कुछ है। वो स्वयं बड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर की बड़ाई चाहता था। ये हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो सेवकाई में है। वो स्वयं को ऊपर उठाने की कोशिश ना करे, परंतु केवल परमेश्वर को ही महिमा देने की इच्छा रखे। अब वो राजा को बताता है कि उसने क्या सपना देखा, परंतु ध्यान दीजिए कि उसने क्या कहा। दानियल अध्याय 2:31। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। तुमने एक विशाल डर देने वाली चमकती हुई मूर्ति देखी। दानियल अध्याय 2:32-35 तक। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांगे पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में कलिहानों के भूसे के नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अतः यही वो सपना था जिसे नबुकदनेस्सर ने देखा था और जो उसे विचलित कर रहा था। दानियल अध्याय 2:36-38 तक। स्वप्न तो यूं ही हुआ, दानियल ने कहा, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजादि राज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सर तू ही है। हमने एक पद छोड़ दिया था, परंतु वो एक महत्वपूर्ण पद है। मैं लौटकर उस पद पर आता हूं। पद 29, वो कहता है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर ये विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। सोने से पहले नबुकदनेस्सर ये सोच रहा था, इस संसार का क्या होगा, इसका क्या भविष्य है, इसलिए ये सपना भविष्य से संबंधित था। परमेश्वर इस सपने में उसके सामने इतिहास का अनावरण करता है कि पृथ्वी पर कौन सा राजा राज करेंगे। संसार पर अधिकार करने वाला पहला साम्राज्य बाबुल का साम्राज्य है, अर्थात सोने का सर। दानियल अध्याय 2:39। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। ध्यान दीजिए कि ये संसार के प्रधान साम्राज्य है जो सारी पृथ्वी पर राज्य करेंगे। दानियल अध्याय 2:40-43 तक। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुमार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुमार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वो राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुमार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे। वो एक मिला जुला संयुक्त राज्यों का शासन होगा, ना कि एक मजबूत तानाशाही। तूने जो लोहे को कुमार की मिट्टी के साथ मिला हुआ देखा, वैसे ही वे एक दूसरे से मिले जुले रहेंगे। दानियल अध्याय 2 पद 43 से लेकर 45 तक। परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे पीतल मिट्टी चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। अतः ये बड़ी मूर्ति सोने का सर बाबुल के साम्राज्य का प्रतीक है, पहला संसार प्रधान साम्राज्य जो एक छोटे साम्राज्य के हाथ में चला जाएगा। चांदी के हाथ और छाती या मादी फारसी साम्राज्य जो पीतल के पेट अर्थात ग्रीक साम्राज्य द्वारा ले लिए जाएंगे, और ये ग्रीक साम्राज्य जिसे लोहे के पैर अर्थात रोमी साम्राज्य उखाड़ फेंकेगा। परंतु फिर उसने लोहे और मिट्टी के 10 उंगलियों वाले पांव देखे, जो कि लोहे और मिट्टी का मिश्रण होने के कारण लोहे से कमजोर थे। वो एक मजबूत राजतंत्र तो नहीं, परंतु एक मिला जुला संयुक्त राज्यों का शासन होगा, और तब भी रोमी साम्राज्य से जुड़ा होगा, क्योंकि इसमें लोहा मिला है। अतः इस कारण और उत्तरगामी दर्शन के कारण जो दानियल ने अध्याय 7 और 8 में देखें, जिसमें दानियल बताता है कि दूसरा साम्राज्य मादी फारसी का, तीसरा यूनान था, और चौथा, जैसा कि हम इतिहास से भी जानते हैं, रोमी साम्राज्य था। बाइबल के विद्वान वर्षों से यूरोप के देशों द्वारा एक संयुक्त राज्य के रूप में संधि करने की प्रतीक्षा में रहे हैं, जो एक अंतिम संसार प्रधान साम्राज्य बनेंगे। रोमी साम्राज्य के बाद आज तक कोई भी संसार प्रधान साम्राज्य नहीं रहा। ये हिटलर का एक सपना जरूर था कि वो संसार का शासक बने, और उसने संसार पर राज्य करने के लिए साम्राज्य बनाने की कोशिश भी की थी, परंतु वो अपने सपने को कभी साकार नहीं कर पाया। कम्युनिस्टों का भी यही लक्ष्य था कि वे संसार प्रधान साम्राज्य बनाएं, पर वे भी अपने सपने को साकार नहीं कर पाए। मैं आपको ऐसी किताबें दिखा सकता हूं जो बाइबल के विद्वानों जैसे डॉक्टर तालबॉट, अर्नॉल्ड गैबलिंग, विलियम नेवल आदि ने लिखी थी, और उन सब ने अपनी किताबों में ये लिखा कि यूरोप के 10 राज्य उठेंगे और वे एक संयुक्त राज्य बनाएंगे और एक संधि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यूरोप में इन 10 राष्ट्रों की मिलीजुली सरकार अंतिम संसार प्रधान साम्राज्य बनेगी। अब क्योंकि ये 10 उंगलियों में लोहा मिला है, अतः ये राष्ट्र जो बनेंगे वे रोमी साम्राज्य से संबंधित होंगे या वे राष्ट्र रोमी साम्राज्य में हिस्सेदार होंगे। लेकिन क्योंकि इसमें मिट्टी भी मिली है, इसलिए उनके बीच में लोकतंत्र होगा। कोई एक राष्ट्र उन पर शासन नहीं करेगा, परंतु सब इसमें हिस्सेदार होंगे और वे सब एक संयुक्त राष्ट्र की तरह मिलजुल कर राज्य करेंगे। अतः बाइबल के विद्यार्थियों की तरह हम भी यूरोप को देख रहे हैं कि कब इन 10 राष्ट्रों का एक यूरोपीय समुदाय बनेगा। जब यूनान एक संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय का आधिकारिक रूप से 10वां राष्ट्र बना, तो बाइबल के विद्वानों में एक अनोखा उत्साह था। अब जो बात इसमें विशेषकर प्रासंगिक और अर्थपूर्ण है, वो अध्याय 2 का 44वां पद है, जहां परमेश्वर कहता है, इन राजाओं के दिनों, ये वे 10 राजा हैं जो इन 10 यूरोपीय राष्ट्रों के संगठन का राजा होंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। अतः वो परमेश्वर इन 10 राजाओं के यूरोपीय समुदाय के शासनकाल के समय में मसीह के आने और राज्य स्थापित करने की घोषणा करता है। यूरोपीय समुदाय के संगठित होने का सत्य बाइबल के दृष्टिकोण से अत्यंत अर्थपूर्ण या अभिप्रायपूर्ण है। इससे संबंधित कई दूसरे पद भी बाइबल में मौजूद है। बाइबल में इन शासकों के बारे में जो अंततः इस 10 राष्ट्रीय यूरोपीय संगठन के होंगे और जिनको इस पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार दिया जाएगा, उनका संपूर्ण वर्णन दिया गया है। जैसे कि दानियल ने अपनी पुस्तक के आगे के हिस्से में उस पाप के मनुष्य के बारे में कहा है जो उठेगा, एक सूक्ष्म दृष्टि या पूर्ण ज्ञान दिया है। परंतु मेरे लिए वास्तव में रुचिकर यह है कि इस यूरोपीय समुदाय को संगठित होते या उभरते देखूं और रोमी साम्राज्य का यूरोपीय समुदाय में पूरी तरह से फिर से जी उठना देखूं। दानियल ने उसकी भविष्यवाणी की थी, उसमें दिखना है। और हम देखते हैं कि ये ताकत में बढ़ रहे हैं, खास तौर पर ये विशेषकर धन के मामले में या अर्थशास्त्र के मामले में, और हम इनकी औद्योगिक शक्ति को बढ़ते हुए देखते हैं। यूरोपीय समुदाय का GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बहुत सशक्त या प्रभावी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 गुना है। जहां तक अर्थशास्त्र और औद्योगिकरण का प्रश्न है, वे सच में आज की दुनिया में एक सबसे बड़ी शक्ति है। वहां अभी तक सैनिक बल नहीं है, वो बाद में आएगा। परंतु ये सोचकर मैं हमेशा उत्तेजित हो जाता हूं कि इन 10 राजाओं के शासनकाल के दौरान स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट न होगा। इस धरती पर मसीह और मसीह का राज्य आएगा। एक पत्थर जो बिना हाथ से काटे एक पहाड़ की तरह बढ़कर सारी पृथ्वी को ढक लेगा। ये सोचना कि हम उन दिनों के करीब आ रहे हैं उत्तेजित करता है। यूरोपीय समुदाय के 10 राष्ट्रों का जो संगठन बना है, उसको देखना आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है। अब वे कहते हैं स्पेन और पुर्तगाल भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। ये सत्य है, तब वे 12 राष्ट्र हो जाएंगे, जबकि वहां 10 ही होना है। हो सकता है कि यूनान बाहर निकल जाएं, या हो सकता है कि स्पेन और पुर्तगाल के जुड़ने से पहले परमेश्वर आ जाएं। परंतु वहां 10 राष्ट्र ही रहेंगे। दानियल की पुस्तक के 7वें अध्याय में दानियल का दर्शन भी ऐसा ही है, जिसमें वो अधिक विस्तार पूर्वक बताता है। रोमन साम्राज्य से निकलने वाले ये 10 सिंह और एक छोटा सिंह जो निकलकर इन तीनों का नाश करता है, परंतु इसे हम तब जानेंगे जब हम अध्याय 7 में जाएंगे। परंतु कुछ भी हो, मैं दानियल के दूसरे अध्याय को उत्तेजित हुए बिना नहीं पढ़ सकता कि आज संसार में जो हो रहा है उसे ना देखूं, क्योंकि हम सीधे वहीं आ रहे हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। यहां ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि रोमी साम्राज्य के बाद आज तक ऐसी कोई विश्व शक्ति नहीं रही है, तथापि संसार पर शासन करने वाला एक साम्राज्य अवश्य होगा जो रोमी साम्राज्य के साथ अन्य 10 राजाओं का संगठन होगा। दानियल अध्याय 2 पद 46 से लेकर 49 तक। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनोगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। दानियल ने अपने तीनों साथियों के लिए निवेदन किया और राजा ने उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया।